Hare Hare वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये न शब्दायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद सात अध्याय नौ श्लोक संख्या 28। एवं जन्म जनम निपतितं प्रभवः अहिकूपे काम अभिकामान अनु यह प्राप्तं प्रसंगात कृत्वात्मसात सुर ऋषिना भगवन् गृहीतः सह अहम् कथं नो विश्वजे तव भृत्य सेवाम्। एवं जनम निपतितं प्रववाहि कूपे एवं जनम निपतितं प्रववाहि कूपे कामाभिकामाननुयः प्रत्वतान् प्रसंगा कामादिकामान्ननुयः प्रपतन् सदं प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरऋषिणा भगवन् गृहीतः कृत्वात्मसात् सुरऋषिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु ऋषिजे तव भृत्य सेवाम्। सोऽहं कथं नु ऋषिजे तव भृत्य सेवाम्। एवं जनम निपतितं प्रववाहि कूपे कामामि कामान्ननुयः प्रपतं प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरऋषिर्भगवान् भगवन् गृहीता सोऽहं कथं नु ऋषिजे तव भृत्य सेवम्। एवं जनं निपतितं प्रवाहि कूपे
कामामि कामाम् अनुयात् प्रपतन्त सङ्गा
सेवाम् एवं जनम् निपतितं प्रभवाहि कोपे
Amen.
एवं इस तरह जनम सामान्य व्यक्ति को निपतितम गिरा हुआ प्रभाव भौतिक जगत के अहिकूपे सर्प से पूर्ण अंधे कुएं में काम अभिकामान इंद्रिय विषयों की कामना अनु अनुसरण करते हुए यह जो व्यक्ति प्रपतन इस अवस्था में गिरकर प्रसंगात बुरी संगति के कारण या भौतिक इच्छाओं की अत्यधिक संगति से कृत्वात्मसात मुझको आपने जैसे आध्यात्मिक गुण प्राप्त करने के लिए सुर ऋषिना महान संत पुरुष नारद द्वारा भगवन हे भगवान गृहीतः स्वीकार सह वह व्यक्ति अहम मैं खत्म कैसे नु निस्संदेह विश्वजे त्याग सकता है सकता हूं तव तुम्हारे भृत्य सेवाम शुद्ध भक्त की सेवा। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हे भगवान मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों की अंध कुएं में गिरता जा रहा था किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस तरह प्राप्त किया जाए। अतएव मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? तात्पर्य जैसा कि बाद के श्लोकों में पता चलेगा, यद्यपि भगवान ने प्रहलाद महाराज को वांछित वर मांगने के लिए कहा किंतु उन्होंने ऐसे वरों की अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उलटकर भगवान से यह प्रार्थना की कि अपने दास नारद मुनि की सेवा में मुझे लगा रहने दे। यह शुद्ध भक्त का लक्षण है। मनुष्य को चाहिए कि पहले गुरु की सेवा करे। ऐसे नहीं होता कि कोई अपने गुरु को छोड़कर भगवान की सेवा करने की इच्छा करे। वैष्णवों के लिए यह सिद्धांत नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तांदेर चरण से भी भक्त सन्निवास है, जन्म जन्म होय यही अभिलाष। मनुष्य को सीधे भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का दासानुदास बने। गोपी भरत तत्कमलयोर दास दासानुदास है। भगवान तक पहुंचने की यही विधि है। पहले गुरु की सेवा की जीव की जानी चाहिए। उनकी कृपा से भगवान की सेवा के निकट जाया जा सकता है। रूप गोस्वामी ने शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रूप गोस्वामी को शिक्षा देते चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्त लता बीज, गुरु की कृपा से और फिर कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त किया जा सकता है। सफलता या सफलता का यही रहस्य है, पहले गुरु की प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए और तब भगवान की प्रसन्न करने का प्रयास होना चाहिए। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं, यस्य प्रसादान भगवत प्रसाद हो, मनुष्य को ज्ञान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, पहले उसे गुरु की सेवा करने के लिए तैयार होना होगा। जब वह योग्य बन जाएगा उसे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का स्वतः अवसर प्राप्त होगा। अतएव प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें नारद मुनि की सेवा में लगे रहने दिया जाए, यही सही निष्कर्ष है। अतएव उन्होंने कहा कि सोहम कतम न विश्वजेत तव वृत्ति सेवाम, भला मैं अपने उन गुरु की सेवा करना कैसे त्याग दूं जिन्होंने इस तरह से कृपा की कि मैं आपको अपने साक्षात देख रहा हूं। प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं आपके गुरु नारद मुनि अपने गुरु नारद मुनि की सेवा में लगा रहा हूं। ओम ज्ञात विराम ज्ञानांजन शला शिक्षुरोन्मीलकं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन गुरवे स्वयं रूपत्कदाहं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपादपद्मं श्रीगुरुमीष्टमां श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं वंशजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं विष्णुचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणदलिता शीर्षकान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका पान्तराधा पान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौरङ्गि राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रहलाद महाराज की ये प्रार्थना इस श्लोक के अंतर्गत आपको दो महत्वपूर्ण बातें दिखाई पड़ती हैं, एक है दैन्य, दूसरा है आत्म निवेदन। पहले दो लाइन जो है उसके अंदर दीनता को व्यक्त कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, मैं कितना पतित हूँ, मैं कितना दीन हूँ, और आत्म निवेदन। दूसरा दो श्लोकों में अपना निवेदन व्यक्त करते हैं, मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा निवेदन क्या है प्रस्तुत करते हैं। तो श्री भक्तिनाथ ठाकुर के शरणागति के षडंगों के भजनों में इसका बहुत विस्तृत तरीके से वर्णन किया गया है। संस्कृत में पूरा भगवद गीता पूरा भागवत में हर जगह हमको एक ही चीज मिलता है, किस प्रकार एक भक्त भगवान की शरण ग्रहण करता है, हाउ ही सरेंडर्स। तो ये शरणागति का जो लक्षण है हर प्रार्थनाओं में दिखाई पड़ती है। तो प्रहलाद महाराज अपनी व्यवस्था अवस्था के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं एक अंधकूप में गिर पड़ा हूं, अंधकूप में गिर पड़ा हूं, और वो अंधकूप में क्या है, सांप है। तो इस श्लोक में एक शब्द आया है, पहला लाइन का आखिरी शब्द है, क्या है वो, अहि कूपे, अहि, अहि मतलब सांप, सांपों से भरा हुआ, सर्पों से भरा हुआ कूप, और उसके अंदर अंधकार भी है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये भौतिक जगत का वर्णन अंधकूप के बराबर किया गया है। और प्रहलाद महाराज इधर तक कहते हैं कि इसके अंदर जो सर्पों से भरा हुआ जो अंधकूप है वैसा है भौतिक जगत। वैसे तो गृहमंदकूपम हितवात्पाटम गृहमंदकूपम, हमने भागवत में पहले पढ़ा है, गृहम अंधकूपम, भौतिक जगत को अंधकूप कहा गया है, लेकिन सर्पों से भरा हुआ अंधकूप कहते हैं, क्योंकि हम ये भौतिक जगत में ये अंधकार में हमको मालूम नहीं है ये व्यक्ति कौन है, हम सोचते हैं संबंधी है, ये मेरा है, ये उसका है, लेकिन अस्तित्व में सब लोग जहरीले हैं, सांप से, सांप जैसे स्वभाव के। सांप मतलब क्या है, सर्प का किसका प्रतीक है, ईर्ष्या का प्रतीक है, सब लोग ईर्ष्यालु है, और आप खुश रहो तो खुश रहने नहीं देंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है ठीक है मैं खुश हूं, ज्यादा देर टिकने नहीं देंगे। अगर आप खुश हो तो लोग सोचते तुम क्यों खुश, इसको मारो, इसको खत्म कर दो, हाँ इसका खुशी को समाप्त कर दो, सब लोग सांप के बराबर है। तो किसी अच्छे कर्मों की वजह से हो, क्या किसी कारण की वजह से हो, आपको सुख भी है, लोग आपको सुखी रहने नहीं देंगे। अगर आपको कुछ सम्मान या कुछ प्राप्त हो रहा है तो आपको वो चीज रहने नहीं देंगे, फिर कोई ना कोई आके आपको खत्म करेगा, कुछ तो ही करेगा। तो ये भौतिक जगत इस प्रकार का भयानक स्थिति है। ये पिछले रविवार को इसी प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के ऊपर 25वां श्लोक में इसी बात को कहा था, ये भौतिक जगत की वास्तविकता। बड़ा अद्भुत बात है कि भगवान इस भागवत में एक छोटे से बालक की मुखारविंद से ये भौतिक जगत की वास्तविकता को वो दर्शा रहे हैं, को बता रहे हैं। जो इतना विद्वान, इतने बड़े गृहस्थ कार्यों को संपन्न करने में जो निपुण होते हैं, वो वैसे लोगों को भी जो अनुभव नहीं है, ऐसे बातों को प्रहलाद महाराज छोटे से 5 साल के बालक को कहते हैं। तो एक बार मुझे याद है कि जब मैं वैसे विचार कर रहा था मैं इधर ज्वाइन करूं इस्कॉन, तो मैं घर में बहुत सारा हलचल हुआ था। मेरे पिताजी बहुत सारे विद्वानों को लाते थे, बहुत बड़े बड़े विद्वानों को, गीता भागवत पुराणों के विद्वानों को मुझे कन्विंस करने के लिए। तो उन्होंने बहुत सारा उदाहरण दिया कि देखो इन्होंने भी ऐसा भक्ति किया, इन्होंने भी भक्ति किया, बहुत सारे श्लोकों से ऐसा ऐसा निकाला किस प्रकार आप अच्छी तरह से भौतिक जगत में रह सकते हो और साथ साथ में भक्ति भी कर सकते हो, बहुत सारे श्लोकों। मैंने कहा मुझे ये सब चीजें नहीं मालूम, मुझे आप जो है प्रहलाद महाराज का प्रसंग सुनाइए। तो आप तो भागवत में एक्सपर्ट हो, उन्होंने भागवत सप्ताह भी किया था। तो मुझे देख के हंस के निकल गए, बस ज्यादा बोला नहीं उन्होंने। तो इतना पावरफुल है। तो ये प्रहलाद महाराज, अगर सच में कुछ ऐसी शिक्षाएं भागवत में, प्रहलाद महाराज का प्रसंग है, ऋषभ देव का है, उधर एकदम खुलेआम बिना शर्माते हुए, ये रविवार का क्लास हुआ था उसके बाद बहुत सारे लोग आपको आप इतना ऐसा कठोर तरीके से ऐसा क्यों बता दिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज का प्रसंग ही ऐसा है। उन्होंने खुलेआम स्पष्ट रूप में कहा, ऐसा कब माना जाता है, बच्चे होते हैं और बूढ़े होते हैं और सियाह होते हैं, वो कुछ भी बोलेंगे ना लोग बुरा नहीं मानते, दे डोंट, वी शुड नॉट टेक इट वेरी सीरियसली। जैसे मान लो कि हमने कोई गलती किया, घर में जो है बच्चा जो है वो बोल देगा ये गलती कर दिया, लेकिन वो भाई बड़े लोग नहीं बोल सकते। जब कोई घर का वरिष्ठ भी है अगर कुछ गलती कर देते हैं, वो बच्चा के बोल रहे गलती किया, तुमने किया तो क्या है, मैं नहीं कर सकता हूँ, कैसा बोल सकता है, बुरा नहीं माना जाता है। तो प्रहलाद महाराज अस्तित्व बच्चे के मुख से कभी कभी सत्य निकल जाता है, वो दो सोचता नहीं ना क्या होगा, इसका क्या होगा, मैं बोलूंगा तो ही कैन टेल वेरी फ्रीली। तो ऐसी इसी प्रकार है उनका प्रहलाद महाराज, उनने ये नहीं सोचा कि कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में, ही हैज जस्ट टोल्ड ये भौतिक जगत जो है ये सांप के बराबर, ये सांपों का कुआं के जैसे बराबर है, और आप सुखी रहना भी चाहते हो तो ये बाकी सांप आपको सुखी नहीं रहने देंगे, जहर से उनको आपको भर देंगे, आपको काट के आपको मार देंगे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं अपनी अपनी विषय में कहते हैं, मैं इस अंधकूप में, सांपों से भरा हुआ अंधकूप में गिरा पड़ा हूं। और एक शब्द है कामाभिकामान और अनु, अनु मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये कामना पूर्ण करने के लिए प्रयास किया, नहीं हुआ, और एक कामना, और एक कामना, ये कोई इसका अंत ही नहीं है। कामाभिकामान जो मुझे अभिकामान मेरे इच्छा को पूर्ण करने वाले वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना इतना किया कि एक पूर्ण होता है तो दूसरा, एक पूर्ण होता है दूसरा, अनगित अनंत कामनाओं के पीछे भागता रहा। इसका केवल एक ही कारण है, क्यों मालूम है? मैंने एवं जन्म निपतितम प्रभवः, एवं जन्म मैंने ये जनसंग किया है, अस्तित्व में मैं निर्दोष था, थे हृदय में कामनाएं थे, लेकिन उसको जागृत करने वाला कौन है? ये बाकी जो दुस्संग है, जनसंग है, उसकी वजह से। आप सबको मालूम है ये षड गोस्वामी रूप गोस्वामी के उपदेशामृत में कहा गया है कि जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिद् भक्ति विनश्यति। ये जनसंग है, ये बड़ा खतरनाक चीज है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे हृदय में कामना होने पर भी तो सोचेंगे ठीक है नहीं करेंगे, अकेला रहोगे तो इतना ज्यादा कामनाएं का सताता नहीं है, सताएगा तो भी प्रयास नहीं करते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है तुमको ऐसे ही कामना वाला, हाँ तुरंत चलो करते हैं। मुझे हमेशा ऑब्जर्वेशन था कि जब मैं हॉस्टल में रहता तो वो टाइम में हर एक लड़का अच्छा ही था, इंडिविजुअल व्यक्तित्व रूप में देखा था अच्छा है, लेकिन उसके साथ और एक मिल जाता है तो तुरंत सोचते आज चलो ताकि पिक्चर देते हैं। अकेले शांति से बैठा है हॉस्टल में, कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं देखता हूँ कि अचानक तैयार हो जाता है पिक्चर जाने के लिए, क्यों? क्योंकि उसको और एक साथी मिल गया, अकेला होता नहीं जाता उसको, है कि नहीं? तो ये भौतिक कामना भले भी है, ये जो संगति की वजह से वो कामनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई इच्छा है, मैं गाड़ी खरीदूं, लेकिन वो गाड़ी खरीदने का इच्छा जो है अंदर ही रह जाता है, लेकिन आपका कोई साथी मिलता है, अरे मैं भी खरीदने का सोच रहा हूँ, चलो हम दोनों खरीदते हैं, है कि नहीं? तो ये जनसंग इतना खराब है, भले क्योंकि वैसे तो हम कृष्ण के अंश है, ये जो इच्छाएं हैं ये बाह्य प्रकृति है, इट इज एक्सटर्नल, ए क्रूड नेचर, ये हमारा स्वभाव नहीं है। तो अकेले अकेले कोई व्यक्ति कामनाओं को पूर्ण करने का प्रयास ज्यादा कोई व्यक्ति करता नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एवं जन निपतितम प्रभवाहिक रूपे, प्रभवाहिक रूपे ये निपतितम, मुझे ऐसा फेंक दिया गया है इसको, कौन किसके द्वारा? क्योंकि मैंने जनसंग के द्वारा, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग द जनरल पॉपुलेस, प्रभुपाद लिखते हैं कि फॉलोइंग द जनरल पॉपुलेस एवं जनम, जनम इधर प्लूरल लिखा हुआ है। कभी भी जब मैं कोई यूथ प्रोग्राम में जाता हूँ या कॉलेज प्रोग्राम में जाता हूँ, ये बात का जरूर उदाहरण देता हूँ कि आप कोई कार्य इसलिए मत करो क्योंकि दूसरा कर रहा है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं बकरी का चाल, भेड़ का चाल, तो बहुत सारे भेड़ बकरी चलते हैं, है कि नहीं? और रास्ते में क्या करो, एक डंडा रखो 2 फुट के ऊपर, सब कूद के जाएंगे, है कि नहीं? और जैसे कूदते कूदते जाएंगे बाद में कुछ समय के बाद क्या करो, वो डंडा निकाल दो, डंडा निकाल दोगे तो क्या होगा, बाकी बकरी वो कूदते जाएगी। वो बकरी से जाके पूछो आप क्यों कूद रहे हो, बोले वो आगे वाला कूदा था ना। तो कल मैं गया था बांद्रा प्रोग्राम करने के लिए, हमको मालूम नहीं था कि उधर कोई रॉक शो चल रहा है, पूरा हो नहीं पाया, पूरा हमको इन्फॉर्मेशन देनी है, इतना गंदा माहौल था। तो मेरा कॉलेज के समय याद आया, तो हॉस्टल की कुछ बातें मुझे याद आया। एक बार ऐसा एक लड़का था, उसने क्या किया, हॉस्टल में आके हल्ला मचा दिया कि ओ ये है पिक्चर ऐसा सुंदर है, ये है मैं देख के आया हूँ, उसमें ये है, उसमें ये है, जो भी अच्छा लगता है यूथ को। तो सब लोग एकदम ऐसा है क्या, चलो। तो 10 लोग गए उनके साथ। तो वापस आने के बाद उस लड़के को इतना मारे, तो मुझे जाके इतना बचाना पड़ा। क्यों मारे? क्योंकि इतना हॉरिबल पिक्चर था, इतना बोरिंग था वो, सबको धोखा दिया। तो ये सोच रहा था कि ये श्रुति सुख आया। फिर वापस अभी तक वो मन से नहीं जा रहा, श्रुति सुख है। वो सुनने के द्वारा ऐसा लगता है हाँ इसमें सुख है, ओके। लेकिन बाद में जैसे मालूम पड़ा उसको बहुत मारे। अब देखिए इतना मार खाने के, जिसका इतना मार है कि उसका मुंह से नाक से खून निकलने लगा, और इतना निकल रहा है, इतना दर्द हो रहा है, वो फिर भी हंस रहा है। देखो दूसरों को उल्लू बनाने का जो सुख है उसको इतना है कि खून निकल रहा है, उसका दर्द का अनुभव ही नहीं हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्या है दुनिया, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर देयर। 10 लोगों को उसने उल्लू बनाया, मार खाने के बाद भी उसको उल्लू बनाने का जो सुख है हाँ वो इतना है कि उसको दुख कि ये खून निकलने का, उसको मार खाने का दुख अनुभव नहीं हो रहा है। तो अब देखिए इससे पता लगता है कि आपको उल्लू बनाने के लिए, आपको चीट करने के लिए लोग कितना हद तक दुख सहने के लिए तैयार है। आपको जितना दुख होता है उससे अधिक दुख सहने के लिए तैयार है। हाँ उसको तो इतना दुख मिला ना, मैं इससे ज्यादा दुख भोगेगा, मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन उसको इतना दुख तो मिलना चाहिए, उसको इतना तो उल्लू बनाना चाहिए। तो दिस इज हाउ द मटेरियल वर्ल्ड इज, ये भौतिक जगत इस प्रकार है। हाँ तो कामाभि कामम अनु, तो ऐसे लोगों को अनुगमन करना। भागवतम में एक शब्द कहा गया है, स्विद्वरा उष्ट करे ही संस्थित पुरुष पशु न कर्ण पे तो जातु नाम गदा गर्ज। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भागवतम में कहा गया है कि चार प्रकार, ये सारे जितने लोग हैं उनको चार प्रकार के जानवरों के रूप में बांटा गया है। हर प्रकार के मनुष्य, जितने मनुष्य है चार प्रकार के जानवर जैसे है। कौन है? शु, शु मतलब एक कुत्ता। विडवराहो, दूसरा सुअर, विडवराहो। उष्ट्र, ऊंट। खरेही, गधा। चार प्रकार का जानवर है। तो ये क्यों है थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे कभी और, लेकिन हर एक व्यक्ति ये चार प्रकार का जानवरों की कैटेगरी में आता है, भक्तों को छोड़ के। बाकी सब भौतिकवादी मतलब कोई ना कोई जानवर की कैटेगरी में आता है। 4 कैटेगरीज जैसे है ना, स्त्री पुरुष ऐसा कैटेगरीज होता है, नहीं ऐसे ही 4 प्रकार का कैटेगरी। एक गधा कैटेगरी में है, ऊंट की कैटेगरी में। हाँ कभी कभी वो इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो एक वो ये चिन्ह लगते हैं, गधा का चिन्ह है ये पार्टी है, ऊंट का चिन्ह। अभी तो पता नहीं, इधर बॉम्बे में इतना दिखाई नहीं पड़ता, बचपन में देखता था इलेक्शन में। तो एक बार था, कोई किसी ने इलेक्शन में खड़ा था और जोर जोर से माइक पे चिल्ला रहा था, आप ऊंट को वोट दीजिए, ऊंट को वोट दीजिए, ऊंट को वोट। तो वैसे ही भागवत में कहा गया 4 पार्टी 4 पार्टी। तो सब सुविद्वारा उष्ट करे संस्कृत पुरुष पशु, तो उसने कहा ये लोग कौन हैं? वो ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों की स्तुति करते हैं जो कभी भगवान का नाम को सुने नहीं। नयत कर्ण पतो पे तो जात हो नाम गदाग्रज, नाम गदाग्रज, गदाग्रज जो गदा को धारण करते हैं, जिनका बलराम जी है वो जिनके अग्रज है। कौन है? कृष्ण है। जब भी कृष्ण का नाम कभी ना सुने हो, ऐसे लोगों को जो स्तुति करते हैं वो ये जानवर के बराबर है। अस्तित्व में जो भक्त नहीं है वो उनको जानवर नहीं कहा गया है, जो भक्त नहीं है उनके पदचिन्हों में चलते उनका स्तुति करते हैं वो जानवर है। ये बहुत डेंजरस है। तो जनसंगा, तो प्रहलाद महाराज अपने आप के लिए कहते हैं कि मैं इस प्रकार की स्थिति में हूं। अस्तित्व प्रहलाद महाराज इस प्रकार की स्थिति में है नहीं है। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर अपने भजन में कहते हैं, सदा पाप है रथो नहीं पुण्य करो लेश, लेश मात्री पुण्य नहीं किया मैं सदा पापी जीवन बिताया। क्या भक्तिनाथ ठाकुर इस प्रकार थे क्या? तो कुछ तो ऐसा कहना है भक्तिनाथ ठाकुर ने ऐसा भजन लिखा कि ये लोगों को दृष्टिकोण में रखते हुए कहा, नहीं। भक्तिनाथ ठाकुर अपने भजनों में अपनी हृदय की बात व्यक्त कर, ये भक्त की दीनता है, भले उन्होंने कोई पाप नहीं किया, केवल कृष्ण भक्ति कौन है, कमल मंजरी भक्ति ठाकुर, लेकिन दीनता में इस प्रकार की भावना हृदय में जागृत होता है सच में। ऐसा नहीं भक्ति ठाकुर काल्पनिक तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है मैं दूसरों के लिए साधक के लिए कुछ लिख रहा हूं, नहीं, इट इज हिज फीलिंग, नहीं कुछ पुण्य रलेश है भगवान, मैंने पुण्य कुछ भी नहीं किया, मैं हमें सदा पापे रहते, हमेशा पाप कार्य किया। तो ऐसे प्रहलाद महाराज की ये जो भौतिकवादियों की स्थिति हमारी स्थिति है, प्रहलाद महाराज की स्थिति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज को इस प्रकार का फीलिंग नहीं हो रहा है, ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। प्रहलाद महाराज इज रियली फीलिंग ऐसा पड़ा हुआ, क्योंकि ये भक्त की दीनता है, इट इज हिज दैन्य। अभी नेक्स्ट दो लाइन में अपनी अवस्था को व्यक्त करके प्रहलाद महाराज कहते हैं, कृत्व आत्मसार, ऐसे जो कुएं पड़े हुए व्यक्ति को कृत्व आत्मसार, आत्मसार मतलब आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की स्तर में या आत्म साक्षात्कार का ज्ञान मुझे प्रदान किया, किसने प्रदान किया, सुर ऋषिना, ऋषिना ये प्लुरल होता है, सुरों का ऋषि यानी देव ऋषि, जैसे हम बोलते हैं देव ऋषि, सुरा मतलब देवताओं, देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, वो ऋषि है, कौन है, नारद मुनि इत्यादि, लेकिन नारद मुनि मेन है। तो सुर ऋषिना भगवान गृहीता, हे भगवान सुर ऋषिना, ऋषियों की संगति से, भक्तों की, महान भक्तों की संगति से, नारद मुनि की संगति से मेरा, मुझे क्या स्थान प्राप्त हुआ, आत्मसात, मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। ऐसे व्यक्ति जो कुएं पड़ा है उसको उद्धार करने वाले कौन है, नारद मुनि। अस्तित्व में जो कुएं में था मैं आपको नहीं जानता था, भगवान मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन नारद मुनि के वजह से मैं आपको जान पाया, बिकॉज ऑफ नारदा, बिकॉज ऑफ नारद मुनि और महान भक्तों की संगति से मुझे आपको जानकारी प्राप्त हुआ। इसलिए आप अगर बोलेंगे मुझे देखो मेरा सेवा करो तो मैं नहीं करूंगा, क्यों, पहला संगति मुझे किससे हुआ था, आपसे नहीं हुआ था, पहला मैं किसके साथ संगति हुआ था, आपके भक्तों से संगति हुआ, नारद मुनि से संगति हुआ, इसलिए सो अहम, इसलिए मैं खत्म, खत्म मतलब कैसे, नु विश्वजेत, विश्वजेत मतलब जे मतलब क्या कर सकता हूं, कैसे क्या कर सकता हूं, तवृत्य सेवाम, आपकी जो भृत्य आपकी जो सेवक है उसका सेवा को मैं कैसे क्या त्याग कर सकता हूं, यानी दूसरे शब्दों में त्याग नहीं करना चाहता हूं, उनका ही सेवा करना चाहता हूं और उनका सेवा से ही आप प्राप्त होंगे, तो इसलिए भले ही आप प्राप्त होने के बाद भी उनका सेवा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपको प्राप्त करना है तो उनका सेवा करना होगा, तो आपकी प्राप्ति के बाद ही मैं उनका सेवा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपको मुझे खोना नहीं है, ये भाव से इस श्लोक को उच्चारण किया जा रहा है। क्योंकि आप रहोगे, आपको तो सहस्त्र सेवक है, मैं आपका सेवा करता रहूं, लेकिन आप तभी प्राप्त होंगे जब आपकी सेवक का सेवा करोगे, ये प्रहलाद महाराज के इस प्रकार का भाव है। तो शास्त्रों में अनेकों जगह इस प्रकार उदाहरण है, उसका उल्लेख है, किस प्रकार की भक्तों की जो सेवा है भगवान की सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वयं भगवान इस बात को कहते हैं अर्जुन को आदि पुराण में, क्या कहते हैं कि नमे भक्त जनापार्ता मद्भक्तानां चे भक्तस्तमे भक्तस्तमामताः, नमे भक्त जनापार्ता मद्भक्तानां चे भक्तस्तमे भक्तस्तमामताः। हे अर्जुन आप सुनो कि जो मेरा भक्त है, अस्तित्व मेरा भक्त नहीं है, जो मेरा भक्त का भक्त होता है वही मेरा भक्त है। तो ये शिव जी भी इस बात को कहते हैं, क्या कहते हैं कि आराधनां सर्वेषां विश्वाराधनं परम तत्तदीयानां समार्चनम तस्मात् प्रतरं देवी तत्तदीयानां समार्चनम, आराधनानां सर्वेषां, अनेकों प्रकार के आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ क्या है, विश्वाराधनं परम, और तत्तदीयानां समर्चनम तस्मान परतरं देवी, उससे परे क्या है, तत्तदीयानां समर्चनम, तदीय वस्तु यानी उनके जो संबंधित वस्तुओं को सेवा करना। तो ये शास्त्रों में अनेकों जगह भरा पड़ा हुआ, अनेकों लीलाओं में इस बात का है। तो हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक वो लीला है पुंडलीक का, ये भी बहुत सुंदर लीला है, इसके अंदर विठल विठला विठला करते हुए अपने गुरु का चरण दबा रहे हैं, गुरु उनके पिताजी है, पिताजी के रूप में नहीं देख रहे थे, उनके गुरु को रूप में देख रहे थे। ये पुंडलिक सेवा कर रहा था, चरण का सेवा कर रहा था, तो विठला विठला पुरा को पुकार रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे। तो कृष्ण आ गए, दरवाजा खटखटाए, बोला कि मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलो। तो ने सोचा कि भगवान है, तो खोलने के लिए गए, सोच रहे थे, सोचा अरे ये तो मेरा सेवा चल रहा है गुरु का। तो मैंने कहा कि रुको आप, वेट। मैंने कहा कि क्यों? क्योंकि आपका दास का सेवा चल रहा है, सबसे पहला मेरा कर्तव्य वतन का सेवा करना, बाद में आके दरवाजा खोलूंगा, आई विल डू लेटर। तब उन्होंने कहा कि बहुत गर्मी लग रहा है मुझे, इधर कुछ तो करो। हाँ, पैर जल रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ईंट को फेंक देता हूँ। ईंट फेंका तो उसके ऊपर भगवान खड़े हो गए। सेवा बाद में कहा कि अरे और एक ईंट दो मुझे, क्योंकि रुक्मिणी भी आ गई। ऐसा सुंदर अनेकों अनेकों शास्त्र में इसी से भरा पड़ा हुआ है। ऑल द स्क्रिप्चर्स आर टेलिंग कि हाँ, भक्तों का सेवा करो। तो पुलिसशेखर आलवार इस बात को कहते हैं, मज्जन्मनः फलमिदं मधुकीट बारे प्राप्तनीय मदर ग्रहे सेवा तव वृत्य 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 प्रचारक वृत्य 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 सिमाम स्मर लोकनाथ। ये बहुत सुंदर श्लोक है। श्रील प्रभुपाद जी इसको बहुत बार कोट किए थे। श्रील प्रभुपाद जी मुकुंद महाराज स्तोत्र के ये श्लोक को बार बार उच्चारण करते थे, जिसके अंदर मुकुंद महाराज सूत्र में कुलशेखर आलवार कहते हैं कि मज्जन्मनः फलमिदं, अगर जन्म लेने का कुछ फायदा है तो, सरल भाषा में कहा जाए, इफ देयर इज एनी बेनिफिट ऑफ आई टेकिंग बर्थ, अगर कुछ फायदा है, मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैट बार है, हे मधुकैट बार है, हे कृष्ण मत प्रार्थने मदनुग्रह ए शैवा, मेरा एक ही प्रार्थना है, और अगर मेरे ऊपर अनुग्रह दिखाना चाहते हो तो आप एक ही एश एवा, इतना ही अनुग्रह कर दो, जस्ट दिस मच एनफ, और कुछ जरूरत नहीं है। एश एवा तवत आपके भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य इति माम स्मर लोकनाथ। सात बार ये शब्द आया भृत्य। वैसे चैतन्य महाप्रभु का जो श्लोक है दास दासान दास, उस पर खाली तीन आया है, थर्ड पोजिशन में आया, दास दासान दास थर्ड पोजिशन में, सातवां पोजिशन है सेवेंथ। अस्तित्व हमारा सिद्धांत है, इट इज आवर मेन फिलॉसफी इज दिस थिंग। तो इसके साथ में मुझे जल्दी भी जाना है कि एक महत्वपूर्ण फिलॉसफी है। कुछ लोग जैसे राधा कृष्ण की उपासना है, तो हमारा जो राधा कृष्ण की उपासना है चैतन्य महाप्रभु पश्चिम में उपासना, वो अन्य राधा कृष्ण उपासनाओं में से अंतर है। जैसे निम्बार्क संप्रदाय में भी राधा कृष्ण का उपासना किया जाता है, वो भी राधा कृष्ण का उपासक है। उनका भाव क्या है, राधा रानी और कृष्ण हैं और मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, ऐसी भाव है। लेकिन गौड़ीय भाव में ऐसा नहीं है। गौड़ीय भाव में क्या है कि राधा और कृष्ण है और मैं कौन हूँ, उनकी सेवकों का सेवक, आई एम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। राधा कृष्ण की सेवा कौन कर रहे हैं, सखियां करती हैं, और सखियों का सेवा कौन करते हैं, मंजरी करती है। मंजरी उनको कुछ राधा कृष्ण से लेना नहीं है, उनको सखियों से लेना देना है। तो हमारी जो वास्तविक स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है, हाँ, जीवे स्वरूप और कृष्ण नित्यदास जो है वो फिलॉसफी की दृष्टिकोण से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है। हाँ, दार्शनिक दृष्टिकोण में ये हमारी संविधानिक स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। लेकिन भाव और गौड़ीय वैष्णव भाव के हिसाब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो क्या है, दास दासान दास। शुरुआत में लोगों को ये नहीं कह सकते कि हाँ हम दास दासान दास, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। जीव एर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास जो है, इट इज फॉर अ फिलॉसफी फिलोसॉफिकल पर्पसेस। लेकिन जीव एर स्वरूप हो दास दासान दास, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है। This is our constitutional position according to our Gaudi Vaishnava mood. ये बात तो करनी चाहिए। तो ये रामानुजाचार्य अनेकों आचार्य, खास करके रामानुजाचार्य की शिक्षाओं में आखिरी शिक्षा यही है, ने कहा कि भक्तों की सेवा करनी। This is just serve the devotees. उससे जो चीज चाहे सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि भगवान की सेवा करोगे, बहुत सारे नियम कानून है, भगवान भी नियम कानून से बंधे हुए हैं, He is also bound. कोई भी किसी के पास जाओ कि, लेकिन भक्त जो कोई नियम कानून से बंधा हुआ नहीं है, वो जो चाहे सब कुछ दे सकता है, ही कैन गिव यू। अस्तित्व में भक्तों की सेवा से जो फल प्राप्त होता है वो साक्षात भगवान की सेवा में कुछ प्राप्त नहीं होता है, यू डोंट गेट इट। तो इसके विषय में सारे शास्त्र में अनेकों अनेकों जगह का वर्णन है। तो एक जगह एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, प्रश्न पूछा, भक्तों की सेवा कहते हैं, अरे हम तो भगवान की सेवा करते, पुजारी हम, पुजारी है। मैंने कहा कि आप एक प्रसंग सुनाए, एक बार श्री प्रभुपाद जी के पास जाके एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद जी, प्रभुपाद बहुत सारे अपराध होते हैं जब भगवान की सेवा करता हूँ। प्रभुपाद ने कहा, तुमको कौन कहा भगवान की सेवा करने के लिए? अरे प्रभुपाद जी, आपने तो कहा था मुझे भगवान की सेवा कर। प्रभुपाद ने कहा, तुम मत करो। तो ठीक है, बोले क्या कल से मैं पूजा में नहीं जाऊँगा। तो क्यों? तुमको जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए। तो दोनों बातों को सुनकर कंफ्यूज हो गया एक बार। तो प्रभुपाद ने कहा कि यू डोंट वर्शिप बट यू वर्शिप, यानी दूसरे शब्दों में तुम भगवान की सेवा करो। कैसे करो? ये समझते हो कि ये मेरी आज्ञा सा कर रहे हो, ये समझते हो मेरी प्रतिनिधि के रूप में तुम कर रहे हो। अस्तित्व में तुम जो सेवा कर रहे हो राधा कृष्ण का, उनका राधा कृष्ण का सेवा नहीं है, मैं राधा कृष्ण का सेवा कर रहा हूं और मुझे तुम सहयोग मात्र दे रहे हो। अस्तित्व में जो भी सेवा हम करते हैं ये भगवान की सेवा नहीं है, ये प्रभुपाद जी का सेवा है। भगवान की सेवा केवल प्रभुपाद जी ही कर रहे हैं। ओनली प्रभुपाद इज सर्विंग राधा कृष्ण, वी आर ऑल सर्विंग हिम। भले वो पूजा का हो, कलेक्शन हो, या कुछ भी हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, ये भगवान की सेवा नहीं है। किसका सेवा है? श्री प्रभुपाद जी का सेवा है। हम होते कौन है? हु आर वी? कृष्ण सहस्र लक्ष्मी, हमारे सेवा स्वीकार करना है तो हमको कितना ऊंचा स्तर में होना पड़ेगा। वी आर नॉट इन दैट, वी आर नॉट क्वालिफाइड। असले कृष्ण की सेवा साधारण चीज थोड़ी ना है। जैसे कोई बड़ा कंपनी है और सबसे एकदम कोई हाई फाई कंपनी है, उसकी नौकरी मिलना साधारण चीज थोड़ी ना है, लेकिन वैसे ही भगवान का सेवा प्राप्त करना है थोड़ा थोड़े साधारण चीज थोड़ी ना है, इट इज नॉट इजी थिंग। वो सेवा प्राप्त कौन करते हैं? सिद्ध पुरुष, मुक्त पुरुष करते हैं, और उनकी कृपा से हमको कुछ सेवा करने का मौका मिलता है। ऐसा लगता है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, अस्तित्व में मैं भक्त का सेवा, आई एम सर्विंग प्रभुपाद। पूजा का भी हो, कुछ भी सेवा है, लेकिन भागवत क्लास देना भी, ये भी क्या है? ये भी भगवान की सेवा है, आर से, लेकिन अस्तित्व में भक्त की सेवा। इट इज सर्विस टू डिवोटी, क्योंकि गुरु आज्ञा, भगवत आज्ञा, ये गुरु आज्ञा, गुरु की आज्ञा से मैं करता हूँ। दिस इज द मोड which we have to accept. ये हमारी भाव होना चाहिए। सुश्रूषा शुद्धानंद के वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव के प्रति भगवान कथा के प्रति रुचि जो है वो कैसे आता है? सुश्रूषा शुद्धानंद भक्तों की सेवा करने के द्वारा होता है। तो भगवान की जो वर्णन है, वो महिमा का वर्णन है अस्तित्व में भागवतम में, उसके ज्यादा भक्तों की सेवा का महिमा का वर्णन भागवत में हर जगह प्राप्त होता है। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रहलाद महाराज का मुझे कि मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ, वाई का हाउ कैन आई गिव अप सर्विस टू माई स्पिरिचुअल मास्टर। कैसे भी किसी प्रकार का हो, कुछ ना कुछ करते रहो, लेट मी डू समथिंग इफ नॉट फुल्ली, ये भाव से श्लोक को उच्चारण किया जा रहा है। ठीक है, हम समाप्त करेंगे। कोई क्वेश्चन पे प्रश्न है तो पूछिएगा। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संघ में एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। श्री प्रभुपाद जी ने गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाया, उन्होंने वो लोगों ने कमीशन ने अलग अलग जोन बनाया, जोनल सेक्रेटरीज बनाया और टेंपल प्रेसिडेंट बनाया और टेंपल कमांडर बनाया, ये सब बनाया। इसके लिए है ये सब लोगों को प्रभुपाद जी की सेवा में लगाने की, संस्था की सेवा में लगाने की, ताकि कृष्ण की सेवा अच्छे तरीके से हो। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। क्या तकलीफ? एक कंपनी में भी ऐसे ही होता है, लेकिन हायरार्की इज ऑलवेज देयर। क्या तकलीफ है? लास्ट क्वेश्चन।
हम शास्त्र में कुछ बोलते हैं लोगों,
हाँ,
तो बोलते कि ये बात तो किसी भी संसार के बारे में और बोलते हैं कि दुख दायी है ऐसा है ऐसा, लेकिन लोगों का प्राय प्रश्न होता है जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक ये बात को कैसे हम सत्य मानें।
बहुत सही बात है, प्रहलाद महाराज का अनुभव था, सत्य रूप में प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न उनका यह है कि जब तक अनुभव नहीं होगा तो कैसे मालूम पड़ेगा, इसलिए उपदेशामृत के शुरुआत में इस बात को कहा गया है। तीन प्रकार के लोग होते हैं, तीन प्रकार के बुद्धिमान, एक सुनने से समझ लेता है, दूसरा लो क्लास सेकंड क्लास बुद्धि किसका है वो अनुभव करने के द्वारा सीखता है, तीसरा कौन है सुनता ही नहीं है, वो क्या जानन श्रुत्वा कैसा श्लोक है, हाँ श्रुत्वा हाँ साध्याम यथार्थ, ये सुनने के द्वारा भी अनुभव के द्वारा भी सीख नहीं सकता, ऐसे लोग तमोगुणी है। तो सात्विक व्यक्ति होता है वो सुनने के द्वारा वो समझ जाता है, लेकिन अनुभव अनुभव मतलब डंडा खाना मार खाना, लेकिन एक बच्चा है उसको बोलो समझ जाएगा, पढ़ना शुरू करेगा, दूसरा उसको मार के, लेकिन वो मार के जो समझाना जो है पशु के लिए मनुष्य के लिए नहीं है, लेकिन जैसे पशु को आप भैंस को बोलो कि आज को आज जरा के खाओ सुनेगा नहीं, उसको गाली देना पड़ेगा मारना पड़ेगा, है कि नहीं था? तो मतलब जो अनुभव से सीखूंगा जो बोलता है उसका मतलब वो क्या है, मैं अरे भैंस मैं भैंस हूं, जब तक डंडा नहीं पड़ेगा तब तक मैं सुनने वाला नहीं हूं, वो ठान के बैठा है नहीं अच्छी तरह से बोलना नहीं सीखा, तो ये दिस इज कॉल्ड मटेरियल नेचर, इस प्रकार डंडा मारते हैं। तो उनको बोलना चाहिए ऐसे तो हमारी समझ है, कुछ लोग ये भी समझने के लिए इतना बुद्धि नहीं है। एक बार किसी ने प्रश्न पूछा जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक मैं कैसे समझूं, तो मैंने कहा कि जब लिखा हुआ पोटेशियम साइनेट जो है वो पॉइजन है, अनुभव करो ये जहर है लिखा हुआ बॉटल में, जब तक अनुभव नहीं होगा मैं कैसे समझू ये पॉइजन है, हाँ उसके विषय में नहीं डर जाएंगे हाँ। तो ठीक है ग्रंथा भागवतम शील प्रभुपाद
मेंटली अनुभव रस्ट लाइफ लॉस की अनुभव
नहीं मालूम अभी भागना हम चलो
लिखे देखने प्रचलन।